सभी भक्तों का हम स्वागत करना चाहेंगे आज के जन्माष्टमी महोत्सव में। हम आज यहां नासिक धाम में ये पुण्य जन्माष्टमी का महोत्सव इतनी धूमधाम से मना पा रहे हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा और अथक प्रयासों के कारण कि यदि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री भगवद गीता का संदेश न केवल पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में यदि न फैलाया होता तो आज हम यहां पर उपस्थित सबसे पहले तो नहीं होते, बल्कि जो कुछ जन्माष्टमी हम साल में मनाते हैं एक बार, उसका महत्व हमें कुछ जान नहीं होता। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था का नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कि केवल ईश्वर भावनामृत नहीं रखा उसे विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत संघ और ज्यादातर हरे कृष्ण आंदोलन, या लोग जब हमें देखते हैं तो कहते हैं हरे कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कि जो भी इस संस्था के संग में आता है तो उसके मुख पर भगवान का नाम सबसे पहले आ जाता है, और बिना भगवान के नाम की महिमा सुने वो व्यक्ति चाहे छोटा सा बालक क्यों ना हो। हमने कई बार देखा है, हम मुंबई में या कहां पर भी, अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में हम घूम रहे थे, हम कुछ प्रचार के कार्य के लिए जा रहे थे तो वहां के वासी हमें देखकर कहते हैं हरि बोल, और छोटे से बच्चे सब कोई जब भी कोई हरे कृष्ण मंदिर में आते हैं तो उन्हें ये ज्ञान रहता है कि हरे कृष्ण मंदिर में ये कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है और ये हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन। तो जैसे ही इस तिलक को देखते हैं तो चाहे वो परिहास से भी क्यों ना बोलते हो, कई बार लोग परिहास कर भी हमें पुकारते हैं, ए हरे कृष्णा, इस प्रकार से भी पुकारते हैं। परंतु शास्त्र क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति परिहास कर भी भगवान का नाम ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे जीवन में केवल साल में एक दिन नहीं बल्कि हर दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का अवसर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने स्वयं के जन्म के विषय में कह रहे हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति के जन्म के विषय में जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, और इस भौतिक संसार में तो खैर हम लोग जो जन्मे हैं हमें इतना ज्ञान नहीं होगा हमारे जन्म के विषय में कि क्या स्थिति थी हमारे जन्म की। और जब कोई हमें बताता है कि ये जगह पर तुम जन्मे थे, इस हॉस्पिटल में, इस समय, और इतने सब लोग थे वहां पर जब तुम जन्मे थे और ये तुम्हारा नाम दिया गया, तब जाकर हमें कुछ ज्ञान होता है हमारे जन्म के विषय में। परंतु भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, हालांकि वो जन्म लेते हैं, स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से। और भगवद गीता के चौथे अध्याय में वो अर्जुन को इस चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो इस चौथे अध्याय में भगवान अपने ही मुख से अपने जन्म की कथा या जन्म का जो महत्व है किस प्रकार से समझा जाए वो बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि है अर्जुन, यदि तुम्हें इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए और ये हमें जान लेना चाहिए कि भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको कह रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये भगवद गीता में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, ये संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, तो मैं अपनी नाक क्यों डालूं इसमें। तो भगवान जो आपके कृष्ण हैं उन्होंने केवल अर्जुन को ये गीता सुनाई, तो अर्जुन कुछ समस्या में थे तो उनके लिए गीता सुनाई होगी, तो मैं क्यों ये गीता खरीदूं और पढ़ूं और अपने जीवन में ये सब अपनाऊं, क्या आवश्यकता है मेरे लिए। तो अर्जुन केवल एक पात्र थे, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं और अर्जुन जो हैं वो भगवान से गीता बहुत बार सुन चुके हैं और पालन भी कर रहे हैं अपने जीवन में। तो अर्जुन केवल एक पात्र बने, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कई बार टीवी में आप कोई इंटरव्यू देखते हैं तो कोई बहुत बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, हार्ट स्पेशलिस्ट, तो हार्ट स्पेशलिस्ट है और एक व्यक्ति उसके साथ बैठकर कुछ प्रश्न पूछता है, तो पूछता है कि हृदय का रोग किन कारणों से होता है और कौन सी आयु में किन किन व्यक्तियों को कब हो सकता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, और क्या उपाय हैं हृदय रोगों से बचने के। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको कुछ हृदय रोग है क्या, तो ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति को जो प्रश्न पूछ रहा है उसे कुछ हृदय रोग है इसलिए वो इस डॉक्टर को ये सारे प्रश्न पूछ रहा है, परंतु यदि उसे होता तो वो उसके क्लिनिक जाता और टीवी के सामने इतने सारे दर्शकों को दिखाते हुए क्यों प्रश्न पूछ रहा है। तो उसे मानो कोई हृदय रोग ना हुआ हो, वो पूर्ण स्वस्थ हो, तो वो प्रश्न पूछ रहा है किन व्यक्तियों के लिए जिनको हृदय रोग हो सकता है और जिनको हृदय रोग है, तो उनके लिए वो प्रश्न पूछ रहा है जो टीवी में उस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये इंटरव्यू चल रहा था मानो, तो अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से जो ओरिजिनल हार्ट स्पेशलिस्ट है क्योंकि हमारे हृदय का जो ओरिजिनल रोग क्या है भगवान को भूले हुए हैं, विस्मृति भगवान की, वो हमारे हृदय का सबसे पहला और ओरिजिनल मूलतः रोग है। और भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं उस रोग को दूर करने के लिए। तो अर्जुन जो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से वो सारे प्रश्न अर्जुन के हम लोगों के लिए है। अर्जुन को कोई बीमारी नहीं है, अर्जुन केवल हमारे बिहाफ पर वो ये सारे प्रश्न कृष्ण को पूछ रहे हैं ताकि हम लोग उसे सुने और हमारी बीमारी दूर हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि यदि हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा। अब एक और प्रश्न कोई पूछ सकता है कि भाई क्या आवश्यकता है मुक्ति प्राप्त करने की। तो कलयुग में लोगों के बहुत से बहाने होते हैं किसी ना किसी प्रकार से भगवद गीता न सुनने के। तो अक्सर लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हरिनाम कीजिए आपको मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, भौतिक संसार से छुटकारा मिलेगा, क्या जरूरत है यहां से निकलने की? देखो कितना अच्छा ये नासिक शहर है और मेरे घर में सब सुविधाएं हैं, परिवार एकदम सकुशल शांति से रह रहा है, घर में टीवी है, कार है, 10 नौकर हैं, तो क्या जरूरत है ये सब मुक्ति और संसार से छुटकारा, क्या जरूरत है इसकी? जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब उन्होंने प्रचार शुरू किया भारतवर्ष में, ये पाश्चात्य देश जाने से पहले की बात है, तो प्रभुपाद जी उस समय झांसी में थोड़ा प्रयास कर रहे थे इस्कॉन को स्थापित करने का। झांसी जानते हैं कहां पर है? मध्य प्रदेश में है झांसी। तो वहां पर झांसी उत्तर प्रदेश में, अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे कोई कहा था कि मध्य प्रदेश में झांसी। तो सब लोग समझ गए झांसी है कहीं पर, भारत में कहीं पर झांसी है, कोई तो प्रदेश में है। ठीक है ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां झांसी में वो प्रचार कर रहे थे और उस समय उन्होंने अपने हाथों से एक पुस्तक लिखी थी, अन्य लोकों की सुगम यात्रा, ये पुस्तक लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो वहां के एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी ये पुस्तक दे रहे थे और समझा रहे थे, तो व्यक्ति झांसी का व्यक्ति वो पूछ रहा था प्रभुपाद जी से कि ये क्या शीर्षक, आप शीर्षक आपने बहुत एक रोमांचक शीर्षक डाला है, अन्य लोकों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो वो व्यक्ति पूछ रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से आप इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं, जो गोलोक वो लोक है वो लोक में सुगमता से जा सकते हैं केवल भगवान का हरि नाम लेने से। तो इस व्यक्ति का प्रश्न था, तो वहां पर जा सकते हैं और वहां से क्या मैं वापस झांसी आ सकता हूं जब भी मुझे इच्छा हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत धाम वैकुंठ धाम जाने के पश्चात आपको झांसी आने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरे धाम पहुंच जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो फिर से नहीं आता। तो इस व्यक्ति ने कहा, यदि मैं फिर से झांसी नहीं आ सकता तो ये पुस्तक लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो कई बार लोगों को लगता है कि मेरे लिए मेरा झांसी ही सब कुछ है और वास्तविक रूप में ये माया का झांसा है। कि कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा झांसी ही सर्वस्व है और इसी में मुझे रहना है। तो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये भौतिक संसार नश्वर है, दुखालय है और इसीलिए ये संसार हमें प्रेरित कर रहा है कि हम इस संसार से मुक्त हों। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन द्वारा हमें बता रहे हैं कि यदि उस प्रकार का छुटकारा पाना है तो क्या करना है। तो भगवान कहते हैं, जन्म कर्म, मेरा जन्म है और मेरा कर्म है, ये पहले समझ लो। तो फिर से कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये भगवान है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, ये सब कुछ है, तो यदि भगवान है तो इनका जन्म कैसे हो सकता है और इनके कर्म कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कर्म तो उन्होंने कहा है कर्मण्यवाद अधिकारस्ते हमारे लिए। तो क्या वो श्लोक खुद के लिए वो कह रहे थे क्या? तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान का भी जन्म होता है, भगवान भी कर्म करते हैं, तो ठीक है यदि भगवान कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भगवान का जन्म है, भगवान के कर्म है और मेरा जन्म हुआ है, मैं भी मनाता हूं अपना जन्मोत्सव हर साल, तो मेरा जन्म हुआ है और मेरे भी बहुत से कर्म हैं, बड़ा लिस्ट निकाल सकता हूं अपने कर्मों का मैं, तो यदि आपके भगवान के का जन्म है और उनके कर्म है और मेरा जन्म है मेरे कर्म है, तब फिर हम दोनों में क्या अंतर रहा? तो चलो मैं चढ़ता हूं ऑल्टर पर और उनके साथ वहां पर खड़ा होता हूं आज के दिन तो मेरी भी जन्माष्टमी मनाइए आप, तो अंतर क्या है ना। अब यहां पर देखिए, केवल यही नहीं बल्कि शास्त्रों में यह कह दिया है कि भगवान का कोई जन्म नहीं, भगवान अजन्मा है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये शास्त्र ही कह रहे हैं कि भगवान जन्मते हैं, कर्म करते हैं। जैसे नारद मुनि एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोका प्यय संभवायया स्वमायया अनुकाल मृच्छति। तो इस सुंदर श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम, उनका न तो जन्म है, उनके न तो कोई कर्म है, न तो गुण है, न दोष है, न नाम है, न रूप है। तो फिर तो ये प्रश्न अवश्य ही कोई उठाएगा कि क्या चल रहा है, क्या जन्माष्टमी है कि नहीं। आप एक तरफ कहते हैं भगवान आपके कह रहे हैं उनका जन्म है कर्म है, और उन्हीं के अंतरंग पार्षद नारद मुनि कहते हैं न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। तो किस प्रकार से हमें इस ज्ञान को समझना है, एक सुंदर उदाहरण से इसे समझाया गया है कि एक बहुत कीमती हीरा, एक बहुत कीमती हीरे को यदि कोई जौहरी के पास ले जाए और वो जौहरी उस कीमती हीरे को देखते हुए कहे कि ये हीरा इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है कि कोई मूल्य इसे लगा नहीं सकता, तो कई बार हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब कुछ चीज बहुत मूल्यवान हो और उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। तो अमूल्य का एक और अर्थ क्या हो सकता है, कोई मूल्य नहीं। और कोई मूल्य नहीं का एक और अर्थ क्या हो सकता है, मुफ्त, फोकट में है कि नहीं तो यदि कोई व्यक्ति को यदि ज्ञान नहीं कि अमूल्य शब्द का अर्थ क्या है, तो वो उस शब्द का यही अर्थ कहेगा कि ये हीरा अमूल्य है तो कोई मूल्य नहीं इसका। तो इसी प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कि आपका जन्म नहीं, कर्म नहीं, गुण नहीं, नाम नहीं, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, आपका भौतिक जन्म नहीं है, आपका कोई भौतिक नाम नहीं है, आपके भौतिक गुण नहीं है। इसीलिए भगवान आगे कह रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये दिव्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म होता है, मेरे कर्म हैं, परंतु वो दिव्य हैं। और हम आज सुबह चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान का जन्म दिव्य है। जैसे यदि हम अपने जन्म की तुलना भगवान के जन्म से करें तो भगवान जन्म लेने से पहले सभी देवताओं को, ब्रह्मा आदि सारी देवताओं को भगवान ने बता दिया था कि मैं कब जन्म लूंगा, कहां पर जन्म लूंगा, कैसे जन्म लूंगा। पहले ही अपने जन्म के विषय में बर्थ सर्टिफिकेट भगवान साइन करके अपना ही दे दिए ब्रह्मा जी को। हम में से यहां पर कोई है जो जन्म लेने से पहले बता दिया था कि मैं नासिक में इस हॉस्पिटल में इस टाइम जन्म लूंगा? कोई है? तो भगवान ने सबसे पहले बता दिया अपने जन्म के विषय में, जन्म लेने से पहले। और यह तो दूर की बात है, केवल अपने जन्म के विषय में पहले से बता दिया यही नहीं, बल्कि भगवान ने यह भी बता दिया कि कौन मेरे माता पिता बनेंगे। ये वसुदेव और देवकी, नंद यशोदा, ये मेरे माता पिता बनेंगे। तो फिर से हम यदि पूछें कि हम में से यहां पर कोई है जो जन्म से पहले अपने माता पिता का चुनाव कर देता है कि ठीक है ये दोनों मेरे माता पिता होने चाहिए और फिर मैं जन्मूंगा, और फिर भगवान ने जन्म लेने के पश्चात वसुदेव और देवकी को बताया कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। देखिए ये एक और अद्भुत गुण भगवान का। तो हम में से कोई है जो जन्म लेने के पश्चात अपने माता पिता को बता रहा है कि मैं बताता हूं तुम दोनों पिछले जन्म में क्या थे। भगवान ने केवल एक जन्म के विषय में नहीं, उनकी सारी हिस्ट्री बता दी, जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री। और भगवान किस प्रकार से जन्मे थे? षड ऐश्वर्य पूर्ण, पूरे ऐश्वर्यों के साथ भगवान जन्मे थे, शंख चक्र गदा पद्म। और ऐसा नहीं कि भगवान जन्मते अब रोना शुरू किए काएं काएं काएं। हम लोग जब जन्मते हैं तो सबसे पहले मुख से क्या निकलता है? रोने की आवाज। और कई बार जब कोई शिशु, कोई बालक रोता नहीं है तो डॉक्टर उसे थप्पड़ मार के रुलाता है। क्यों रुलाना जरूरी है? ताकि उसकी सांस चालू हो जाए। रोएगा तो सांस भरी जाएगी, तो सांस लेना शुरू करेगा। तो यदि कोई बाय चांस ये कहे कि मैं रोया नहीं था तो डॉक्टर का थप्पड़ अवश्य खाया था फिर रुलाया गया था। तो सबसे पहले हम पैदा होते ही हमारे ऊपर हिंसा होती है, डॉक्टर का थप्पड़। परंतु भगवान श्री कृष्ण पर कौन किस प्रकार की हिंसा करने वाला था? कंस। और कंस केवल एक छोटा सा थप्पड़ मारकर नहीं चले जाने वाला था, कंस कृष्ण को जान से मारने के लिए उतारू था। तो भगवान कृष्ण के ऊपर किस प्रकार की हिंसा होने जाने वाली थी कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने सारी योजना बनाई थी? तो इसीलिए भगवान का जन्म हमने केवल कुछ यहां पर मुद्दे लिए हैं कि जिससे हम समझ पा सकते हैं कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है। और भगवान के कर्म, संस्कृत में एक सुंदर उत्प्रेक्षा में कहा गया है कि कर्म व्यक्ति क्यों करता है। कहा गया है अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टिता इति कर्म, अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे, कि हमारे अंदर अपूर्णता रहती है और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। जैसे देखिए रोज हम कितने कर्म करते हैं, सोना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, परिवार की देखभाल, नहाना खाना पीना, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सब करने की आवश्यकता क्या है? रोज हमें क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि अंदर अपूर्णता महसूस करते हैं रोज। जैसे ही रात को पूरा खाकर प्लेट भर कर खाकर सोए हैं और सुबह उठते ही अपूर्णता महसूस होती है, अरे कुछ लाओ खाने के लिए, तो सुबह से शुरू हो जाता है खाने का प्रयोजन, क्योंकि अंदर अपूर्णता है। हमें सोने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अपूर्णता है, यदि सोएंगे नहीं तो दिमाग पागल की तरह हो जाएगा, और कपड़े पहनने पड़ते हैं, कोई घर चाहिए हमें, सुरक्षा चाहिए, परिवार चाहिए, और अन्य प्रकार की सामाजिक क्रियाएं हमारे साथ होती रहनी चाहिए, तब जाकर हम जी पाते हैं इस संसार में। तो वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो ये भूख लगना, प्यास लगना और ये सारी हमारी आवश्यकताएं, ये एक प्रकार से अपूर्णताएं हैं हमारे अंदर, और इनको पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते रहते हैं। कितने प्रकार के कर्म करते रहते हैं, परंतु भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ भगवान के विषय में पूर्ण है, कोई भी अपूर्णता नहीं है भगवान के अंदर। तो यदि भगवान के अंदर कोई भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है तो फिर भगवान को क्या आवश्यकता है कोई कर्म करने की। जैसे एक जर्मनी का एक फिलोसोफर था, और ये जर्मनी का फिलोसोफर ये भारत में आया, उसने बहुत सुना था कि भारत में धर्म का पालन बहुत होता है, तो वो ढूंढने आया था कि धर्म का पालन होता है तो देखते हैं कौन से भगवान को ये पूछते हैं यहां पर। तो वो भारत में आया और विचरण कर रहा था पूरे भारत में, अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थानों पर और अलग अलग प्रकार के मंदिरों में जाकर वो दर्शन कर रहा था, देख रहा था कि कहां पर ये जो इनके भगवान हैं वो दिखते हैं। तो सारे मंदिरों में जाने के बाद अंत में वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आया, और जब वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आया और जब भगवान को देखा उसने, तो उसने कहा कि यही भगवान है। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई इतने मंदिरों में तुम गए और भगवान कृष्ण को तुम क्यों इस प्रकार से कह रहे हो। तो उसने कहा कि बाकी मंदिरों में मैंने देखा कि सभी कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं, कोई कर्म में लगे हुए हैं, कोई असुरों का वध कर रहा है और कोई ध्यान अवस्था में है, ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे हुए हैं, शिव जी ध्यान में लगे हुए हैं। तो मैंने देखा अन्य सभी मंदिरों में सभी किसी न किसी कर्म में कार्य में लगे हुए हैं, परंतु ये जो भगवान कृष्ण हैं ये केवल आनंद घन हैं, ये केवल अपनी बांसुरी बजाते हुए ये श्रीमती राधा रानी के साथ विहार कर रहे हैं। तो ये असली भोक्ता हैं, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इन्हें कोई ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही यहां पर, ये केवल बांसुरी बजाते हुए आनंद भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जब मथुरा में जन्मे और गोकुल में उन्होंने लीलाएं की तो रोज सूटकेस लेकर 9 से 5 ऑफिस जाना पड़ता था भगवान को। अरे ये सब तो दूर की बात है, भगवान अपनी इच्छा शक्ति से, केवल भगवान यदि इच्छा करें तो सब कुछ हो जाता है इस संसार में, और वो केवल एक ही शक्ति है भगवान की। ऐसी अनगिनत शक्तियां हैं भगवान की, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च कहा गया है। विविधैव शक्ति है भगवान की, विविध शक्तियां हैं, और ये सारी शक्तियां भगवान के लिए सब कार्य संपन्न करती हैं। जैसे कहा गया है कि संसार में एक घास का तिनखा या एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता बिना भगवान श्री कृष्ण के आदेश के। एक बहुत सुंदर घटना है इसके संदर्भ में। जयपुर में राधा गोविंद देव जी का बहुत विशाल मंदिर है, तो एक बार एक व्यक्ति वो श्री गोविंद देव का दर्शन करने वहां गया और वहां पर इस प्रकार से भागवत पाठ चल रहा था, तो उसने भगवान का दर्शन किया और आकर वो प्रवचन में बैठ गया। जैसे आप लोग सब बैठे हैं, तो उसने दर्शन लिया गोविंद देव जी का और आकर वो प्रवचन में बैठ गया। और प्रवचन में वो सुन रहा था, तो जो प्रवक्ता थे वो अपने प्रवचन में ये भगवान का गुण बता रहे थे कि जब भगवान कुछ चाहें, जैसे वो श्लोक है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, यदि भगवान किसको बचाना चाहे तो कोई नहीं मार सकता, और यदि भगवान किसको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। तो इसके संदर्भ में प्रवक्ता ने अपने प्रवचन में कहा कि यदि आप कुछ खाना चाहते हो परंतु भगवान की इच्छा है कि आप उपवास करो, व्रत करो उस दिन, फास्टिंग, तो चाहे आप कितने भी प्रयास करो, यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो व्यक्ति नहीं खा सकता। और फिर प्रवक्ता ने इसके साथ साथ यह भी कहा कि इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ने यह ठान लिया कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मैं निर्जल उपवास रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, परंतु यदि गोविंद देव जी की इच्छा है तो वो खिलाकर ही रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति वो बैठा हुआ था श्रोताओं में और वो सुन रहा था, तो पहली बात तो उसे जम गई कि हाँ ठीक है, यदि मैं खाना चाहूं और यदि ये गोविंद देव जी की इच्छा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा उस दिन खाने के लिए। परंतु ये कैसे समझा जाए कि यदि मैंने ठान लिया है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो कोई जबरदस्ती मेरे अंदर डालेगा कोई कुछ, ये थोड़ी बात जमी नहीं। तो वो मन में इसे पचा नहीं पाया, तो वो बाहर आया और उसने सोचा कि ठीक है चलो ये गोविंद देव जी को परख कर देखते हैं, तो आज मैं ये प्रण लेता हूं कि आज 24 घंटा पूरा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं ये चुनौती दे रहा हूं गोविंद देव जी को कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये चुनौती तो थोड़ी उसके लिए भी थोड़ी संघर्षकारी थी, क्योंकि आप लोग जो आज उपवास कर रहे हैं आप लोग जान सकते हैं कि एक दिन, पूरे एक दिन अन्न का एक दाना नहीं खाकर और बिना पानी पीकर रह पाना कितना मुश्किल हो जाता है। हा? कितने लोग यहां पर फास्टिंग कर रहे हैं, आज निर्जल उपवास रखे हैं कितने? अच्छा, अभी तक गाड़ी चल रही है ठीक? ज्यादातर शाम के समय के बाद फिर भगवान के आविर्भाव का उत्साह बढ़ जाता है जो लोग निर्जल करते हैं, क्योंकि 12 बजे सबसे ज्यादा प्रसन्नता क्यों होती है, पानी पी सकते हैं, खा पी सकते हैं, हो गया अभी, तो इसलिए जोर जोर से नृत्य करके आइए भगवान, थोड़ा जल्दी आइए, 12 बजे क्यों। तो इस व्यक्ति ने ये ठान लिया कि आज मैं बिल्कुल खाऊंगा नहीं या पीऊंगा नहीं कुछ भी, और देखते हैं कि ये गोविंद देव जी किस प्रकार से मुझे इसमें हराते हैं। तो इसने पहले सोचा कि यदि मैं अपने घर जाऊंगा तो तो वहां पर हो सकता है कि घरवाली कुछ लाकर सामने रख दे तो प्रलोभन सा हो जाएगा और उसको देखकर इच्छा हो जाएगी और मैं खा लूंगा, तो ठीक है मैं घर नहीं जाऊंगा आज। और फिर उसने सोचा कि यदि मैं किसी मार्केट में या किसी गांव में से गुजर रहा हूंगा तो वहां पर भी हो सकता है कि मन भ्रमित हो जाए, कोई व्यक्ति कुछ बेच रहा है, फल बेच रहा है, कुछ कोई भेलपुरी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, तो वो देखकर मन लालायित हो जाएगा उसे खाने के लिए। तो उसने सोचा मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल में जहां पर कोई प्रलोभन नहीं दिखाई देगा मुझे। तो वो जंगल में गया और जंगल में भी वो एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर उसने सोचा कि पूरा दिन मैं इस पेड़ पर ही बिताऊंगा। तो अब पेड़ पर बैठा रहा, कुछ घंटे बीते और उसके पश्चात उसने देखा कि कुछ वहां के यात्री जो गोविंद देव जी का दर्शन कर अब अपने गांव जा रहे थे, तो उसी जंगल के पथ से जा रहे थे। तो ये कुछ यात्री थे और चलते चलते वो थोड़ा थक गए थे, तो उन्होंने अपने आप में वो चर्चा कर रहे थे कि कहीं बैठकर थोड़ा आराम करना चाहिए, और ये ऊपर बैठा सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था। तो इन यात्रियों ने निर्णय किया, चलते चलते वो इसी पेड़ के नीचे पहुंचे, ये व्यक्ति जिस पेड़ पर था उसी पेड़ के नीचे पहुंचे और फिर उन्होंने निर्णय किया कि ये अच्छा बड़ा पेड़ है, यहीं पर थोड़ा आराम करते हैं। तो थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और जैसे ही जगे, वो जगने के पश्चात सोचे कि अब चलने से पहले थोड़ा भोजन पानी इत्यादि कर लें। तो भोजन का नाम सुनते ही, पहले से अब इतने घंटे बीत चुके थे तो भूख तो अंदर से सता रही थी, परंतु ये दृढ़ निश्चय कर बैठा था इसलिए सहन कर रहा था उस भूख को, परंतु भोजन नाम सुनते ही थोड़ी सी भूख और ज्यादा प्रज्वलित हुई अंदर, भूख की अग्नि। तो इन्होंने फिर गोविंद देव जी का महाप्रसाद वो बहुत मात्रा में पैक कर लाए थे, तो उसे वो सब खोलने लगे और अब सभी बैठकर उसे पाने ही वाले थे भगवान के प्रसाद को, कि उसी समय दूसरी तरफ से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। तो ये अचानक रुक गए कि ये घोड़ों की आवाज कहां से आ रही। तो ये घोड़ों की आवाज थी कि कुछ डकैत घोड़ों पर सवार हुए वहां से वो भी गुजर रहे थे। तो जैसे ही घोड़ों की आवाज सुनाई दी, पता लगा कि ये डकैत आ रहे हैं, तो ये सारे यात्री भाग निकले वहां से, परंतु भागने से पहले वो भोजन, गोविंद देव जी का प्रसाद वहीं पर छोड़ दिया उन्होंने। अब ये व्यक्ति ऊपर से ये सब कुछ देख रहा है कि ये लोग भाग चुके हैं, सारा का सारा प्रसाद, तो इसने क्या योजना की कि ये डकैत चले जाएं तो ये प्रसाद मैं ऊपर रख लूंगा अपने पास, और कल जो मेरा प्रण है 24 घंटे का वो पूरा होने के बाद फिर इसे खाऊंगा। परंतु ये नीचे उतरने से पहले डकैत वहां पर आके उन्होंने अपना डेरा जमा लिया और सारे वहां पर अपने घोड़ों को तैनात कर दिया और सारे डकैत घोड़ों से नीचे उतरे, जो कुछ चुराया था उस दिन वो सब कुछ नीचे रखा और अब बस अपने आप में सब वो जो चुराया हुआ माल है उसे बांटने ही वाले थे। तो एक डकैत ने देखा कि अरे ये पेड़ के नीचे देखो कुछ अच्छी सुगंध भी आ रही है और दिखने में भी कुछ खाद्य पदार्थ दिख रहे हैं। तो सभी जाकर निकट से देखते हैं तो मानो सजाकर वो जस्ट प्लेट सभी बनाकर अब खाने वाले थे तो भाग चुके वहां से डकैत को देखकर। तो ऐसा इनको लगा कि हमारे लिए किसी ने प्लेट बनाकर रखा है। अरे अक्सर तो हम जाकर इतनी चोरियां करते हैं और जबरदस्ती किसी का माल हड़पना पड़ता है, यहां पर तो देखिए किसी ने हमारे बाकायदा हमारे लिए किसी ने कोई भोजन पानी की व्यवस्था की है। तो बहुत खुश हो गए, तो सभी कहे कि ये चोरी का माल बाद में बांटेंगे, सब बैठ जाओ और महाप्रसाद गोविंदे शुरू कर देते हैं। वो तो नहीं कहे उन्होंने, परंतु वास्तविक रूप में महाप्रसाद गोविंदे, गोविंद देव जी का महाप्रसाद था वो। तो जैसे ही सभी बैठ गए तो उनका जो सरदार था, डकैतों का सरदार, वो सरदार ने सभी को रोक दिया, कोई खाना मत उसको। सभी रुक गए, भाई क्या इसमें, क्या इसमें कोई अपराध है? इतने बड़ा बड़ा अपराध हम करके आ रहे हैं तो ये खाने में क्या अपराध? नहीं, अरे मूर्खों थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। कौन मूर्ख होगा कि इस प्रकार से तुम्हारे लिए सजा के रखेगा भोजन? कि हाँ, वो भी प्रश्न अच्छा है कि कौन है जो सजा के रखेगा इस प्रकार से। तो सरदार ने फिर अपना दिमाग लगाया और वो कहता है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमें इस भोजन के द्वारा विष खिलाना चाहता है और उसे ये ज्ञान हो चुका होगा कि हमारे पास इतना माल है चोरी का, तो भोजन के द्वारा हो सकता है हमें विष पिलाकर मारे और ये सारा अपना जो माल है चोरी का ले जाए। तो सबसे पहले तो मैं तुम सबको भेजता हूं, ढूंढो वो व्यक्ति, यहीं कहीं आसपास होगा। तो सब यहां वहां निकल गए और उनमें से एक व्यक्ति ने पेड़ के ऊपर इन महाशय को देख लिया। हाँ, ये एक तो ऊपर कोई दिख रहा है बैठा हुआ, तो ये बंदर की तरह पेड़ पर क्यों बैठा है? तो सबसे पहले उसे तलवार दिखाई, नीचे आओ। तो अब वो डर रहा था, नीचे आ गया और आकर पूछा, कौन हो भाई और ऊपर क्या कर रहे हो? तो उसने बताया, सब सत्य बताए कि भाई ऐसा है कि मैं कोई, जो तुम्हें संशय हो रहा है वैसा कोई व्यक्ति नहीं हूं और मैंने ये भोजन नहीं रखा, बल्कि भोजन रखना तो दूर की बात है, मैंने तो आज प्रण लिया है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो सरदार ने कहा, अच्छा प्रण लिया है खाओगे नहीं लेकिन खिलाओगे, सब समझ रहे हैं तुम्हारी चाल, प्रण लिया है खाओगे नहीं और हमें विष खिलाओगे, पकड़ो दो लोग इसे और ये सारा इसके मुंह में डालो पहले। अब तो अब मैं क्या कहूं ही नहीं, क्या इन्हें समझ में आएगा कि मैंने क्या प्रण लिया है, व्रत लिया है। तो दो लोग पकड़े और एक व्यक्ति ने पूरा गोविंद देव जी का महाप्रसाद लिया और उसके मुंह में ठूसा अंदर, और ये व्यक्ति, अब भूख तो लगी थी और ये महाप्रसाद जब अंदर ठूसा गया तो खाते खाते जोर से चिल्लाने लगा, गोविंद देव जी की। और जाकर इसने सबसे पहले गोविंद देव जी को दंडवत किया और क्षमा याचना की कि भाई जो मैंने सुना था उस प्रवचन में वो वास्तविक रूप में ठीक हो गया। तो हो सकता है इस प्रवचन के बाद आप में से किसी लोगों ने प्रण ले लिया होगा कि 12 बजे से पहले मैं ये प्रण ले लेता हूं कि देखते हैं भगवान खिला था कि नहीं मुझे। तो हो सकता है यदि गोपीनाथ जी की इच्छा हो तो वो आपको खिला दें, उनका जन्मदिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपूर्णस्य निजपूर्थार्थे चेष्टता इति कर्म, कि भगवान को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, कि मैं फिर भी कर्म करता हूं ताकि मैं एक उदाहरण स्थापित करूं जन समुदाय के लिए। तो भगवान के कर्म दिव्य हैं, जो भी भगवान करते हैं वो दिव्य हो जाता है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के यदि लीलाओं को आप लें तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो साधारण सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसी प्रतीत हो सकती हैं मानो कि कोई व्यक्ति चोर है, झूठा है और इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो। जैसे भगवान ने माखन चोरी की लीला की, तो भगवान को माखन चोर के नाम से जाना जाता है, है कि नहीं? ये भगवान का एक नाम पड़ गया है, माखन चोर। अब मान लीजिए हम में से जो लोग यहां पर हैं, जैसे मेरा परिचय दिया गया प्रवचन के पहले, तो हम में से किसी का कोई परिचय दे रहा है कहीं को, किसी को। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति का बिजनेस है या इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसका परिचय दिया जाए कि फलाना व्यक्ति ये आज हमारे मध्य है, हमारा सौभाग्य है, इनका ये नाम है, ये बिजनेसमैन है, ये डॉक्टर है और ये चप्पल चोर भी हैं। ये बचपन में चप्पल चोरी किया करते थे, ज्यादा नहीं, एक दो, पेंसिल रबर तो रोज चोरी किया करते थे, तो आज ये प्रवचन देंगे आपको, पेंसिल चोर चप्पल चोर प्रवचन देंगे आपको तो कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा? तो भगवान का परिचय दिया जाता है भागवतम में कि भगवान कौन से चोर हैं, माखन चोर। परंतु जब भगवान का परिचय माखन चोर के रूप में दिया जाता है तो लोग गुणगान करते हैं उसका, लोग बैठकर वो माखन चोरी की लीला सुनते हैं। यदि मैं शुरू करूं अपने चप्पल चोरी की लीला कि एक दिन की बात है, जब मैं केवल 4 साल का था और मैंने, अब क्या बताऊं, छोड़ो। परंतु भगवान माखन चोरी लीला सुनना तो दूर की बात है, लोगों ने अपनी जीविका बना ली भगवान की माखन चोरी लीला को गा गा कर। मैं नहीं माखन खायो इस लीला को गाकर कई जो गायक हैं उन्होंने अपनी जीविका बना ली है, कई एल्बम बिके हैं उनके केवल भगवान की इस माखन चोरी लीला को गाकर। तो क्यों नहीं भगवान की चोरी की लीला भी दिव्य हो, है कि नहीं? भगवान रण को छोड़कर भाग जाते हैं तो भगवान का गुणगान होता है, रण छोड़ रहा है। कहां पर है? डाकोर में। वो क्या कहते हैं वो लोग वहां पर, डाकोर मा कौन छे, रण छोड़ राय छे। इतनी अच्छी गुजराती नहीं आती मुझे, परंतु थोड़ा बहुत कुछ याद है। तो वहां पर लोग गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस लीला का, जब भगवान रण छोड़कर भाग गए। तो भगवान यदि चोरी करे, रण छोड़कर भाग जाए, दूसरी स्त्रियों के साथ रास लीला करे, उसमें भी भगवान का गुणगान होता है, रास बिहारी लाल की जय। तो भगवान के जो कर्म हैं वो साधारण नहीं हैं। कितने कवि हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कविता लिखकर अपना जीवन बना लिया। कितने पेंटर हैं, कितने ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने भगवान के सुंदर लीलाओं के चित्र बनाकर वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कितने मूर्तिकार हैं जिन्होंने भगवान की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति बना बनाकर वो अपनी जीविका चला रहे हैं। तो लोग इस भौतिक संसार में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के ऊपर निर्भर हैं कितना, केवल उनकी जीविका के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो नारद मुनि भी उस श्लोक में यही कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका जन्म भौतिक जन्म के समान नहीं है, आपके कर्म भौतिक कर्मों के समान नहीं है जो व्यक्ति करते हैं संसार में। आपका जो रूप है वो रूप भी आपका भौतिक रूप नहीं है। अब यहां पर आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग स्वरूप में खड़े हैं, तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है भाई ऐसे तो मैं भी खड़ा हो सकता हूं, और बांसुरी बजाना क्या हो, तो मैं सीख सकता हूं। आपने हरिप्रसाद चौरसिया, उनसे सीखने में क्या है, या हरिप्रसाद चौरसिया को ऐसे खड़ा कर दो। तो कई बार लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से मुझे थोड़ा आकर्षण है क्योंकि मुझे बांसुरी अच्छी लगती है, और ये आपके जो कृष्ण है बांसुरी अच्छा बजाते हैं, तो मेरे को बांसुरी अच्छी लगती है इसलिए ये भगवान होने चाहिए, या मुझे वो नीला रंग बहुत अच्छा लगता है आपके कृष्ण का, वो मेरा फेवरेट कलर है नीला, इसलिए भगवान हो सकता है भगवान है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर नीला है। या कई लोग बोलते हैं कि मेरा फेवरेट फिल्म का एक्टर है उसका भी नाम भगवान का ही आपका है, गोविंदा, तो इसलिए अच्छा है ये आपके भगवान हो सकते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। तो भगवान बता रहे हैं तत्वतः अर्जुन जानो मेरे जन्म और कर्मों को, केवल इसलिए नहीं कि मैं बांसुरी बजाता हूं, मेरा वर्ण नीला है और मेरा नाम ये है, इसलिए तत्वतः जानना है यदि छुटकारा पाना है संसार से। तो भगवान का जो रूप है वो रूप भी जो हम देखते हैं, जैसे कहा गया है कि हमारा जो रूप है वो भगवान के रूप का एक प्रतिबिंब समान है। हमारा रूप इस प्रकार से है क्योंकि भगवान का रूप है, और वो भगवान का रूप दिव्य है। एक सुंदर उदाहरण से इसे समझाया गया है कि जैसे मान लीजिए एक मिस्री का डला है, मिस्री जानते हैं, और फिटकड़ी, फिटकड़ी को क्या कहते हैं इधर, तुरटी, तुरटी सब हम समझ गए तुरटी क्या होता है, और मिस्री खड़ी शाखर, तो खड़ी शाखर और तुरटी ये दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं। तो यदि खाने के पश्चात कोई व्यक्ति हमें कहे थोड़ा मुंह मीठा कीजिए तुरटी से, दिखने में एक समान है, तो क्या मुंह मीठा होगा तुरटी से, फिटकड़ी से? उल्टा बेस्वाद हो जाएगा पूरा मुंह। तो दिखने में मिश्री खड़ी साकर और ये तुरटी एक समान दिखते हैं, परंतु गुण दोनों के गुण विपरीत हैं। तो उसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत होते होंगे, परंतु वास्तविक रूप में भगवान उस मिश्री के समान है, और हमारा ये जो शरीर है भौतिक शरीर ये उस तुरटी के समान है, बेस्वाद। जैसे भागवत में वर्णन है, बेस्वाद में इसलिए कह रहा हूं कि ये शरीर से दिन भर क्या निकलता रहता है, ये जो 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में, ये 9 छिद्रों में से रोज मल मूत्र ये सब निकलता रहता है, यदि रोज इसे साफ न करें, रोज यदि दांत न घिसें तो ऐसी बदबू आएगी कि अगला व्यक्ति धराशाही हो जाएगा यदि 2 दिन तक हमारे दांत साफ न करें तो। हम तो भगवान का रूप भागवत में बताया गया है कि इतना दिव्य किस प्रकार से है। जब वृंदावन में भगवान विचरण किया करते थे अपनी बांसुरी बजाते हुए, तो भगवान की सुंदरता को देखने के लिए न केवल वहां के ब्रजवासी बल्कि हर एक प्राणी भगवान की सुंदरता का आस्वादन करने के लिए भगवान के निकट इर्द गिर्द घूमते रहते। जैसे भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो हिरण गाय सब भागकर भगवान के इर्द गिर्द आ जाते, और भगवान का जो सुंदर वैजयंती माला, भगवान की माला को देखते हुए बहुत से भौंरे और मधुमक्खियां वो भगवान के शरीर के इर्द गिर्द वो मंडराती रहती, और बहुत सुंदर आवाज के साथ वो भगवान को प्रसन्नता देती। और ऐसा भी वर्णन है कि भगवान के जो केश, भगवान के केश जो इतने घुंघरालू भगवान के केश, काले काले केश को देखकर कई भंवरे ये सोचते कि ये दूसरा भंवरा कौन है भगवान के मुख के सामने। क्योंकि भगवान का मुख जो था, भगवान का मुख वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूर्ण चंद्र है या कमल का पुष्प है। तो कमल के पुष्प का आस्वादन करने के लिए हर समय भंवरे कमल के पुष्प के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो जैसे ये भंवरे देखते कि भगवान, ये इनका मुख कमल के पुष्प के समान है, तो तुरंत आ जाते हैं उसका आस्वादन करने के लिए। तो देखिए वृंदावन में ये भंवरे, तितलियां, पक्षी, हिरण, गाय, ये सब भगवान से इतना आकर्षित रहते जब भगवान विचरण करते थे ब्रजभूमि में। और हमारे शरीर के विषय में कहा जाए कि हम जब विचरण करते हैं नासिक में, तो हमारे इर्द गिर्द कौन घूमते हैं? मच्छर, मक्खी। कोई व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द भौंरे घूमना शुरू करते हैं उसकी सुंदरता को देखते हुए, या हिरण दौड़ते हुए आते हैं उसकी सुंदरता को देखने के लिए? ये शरीर किसके लिए आकर्षित है हमारा? मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया, वायरस, बस यही चीज से आकर्षित है। और यही जो जीवाणु हैं वो आकर्षित रहते हैं हमारे इस शरीर से। इसलिए इस शरीर को असत, अचित और निरानंद कहा गया है। और भगवान का जो शरीर है वो सत, चित, आनंद उसे कहा गया है। तो भगवान का जो रूप है, नारद मुनि कहते हैं कि वो भी साधारण नहीं है, वो रूप भी दिव्य है। तो यदि भगवान का रूप दिव्य है तो भगवान के कर्म भी दिव्य होने चाहिए। और उसी के साथ साथ नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आपके गुण दिव्य हैं। तो भगवान का रूप, भगवान का नाम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमें आज समझनी चाहिए कि भगवान का जो नाम है वो इतना दिव्य है कि इस कलयुग में विशेष रूप से भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस प्रकार से हुआ है? अपने नाम के रूप में। और केवल भगवान अपने नाम के रूप में ही अवतरित नहीं हुए, बल्कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सिखाया कि इस नाम अवतार को कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया द्वापर युग में, परंतु भगवान ने सोचा कि कलयुग में ये लोग जो हैं वो इतने मंद हैं, सब कुछ मंद है कलयुग में हमारा, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, मंद स्मृति, मंद आयु, सब कुछ मंद है हमारा कलयुग में। तो भगवान ने सोचा कि ये गीता का ज्ञान मुझे आकर अपने द्वारा दिखाना होगा कि कैसे इसे पालन किया जाए। तो भगवान भक्त के रूप में आए, भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने माला हाथ में लेकर सिखाया, हाथ ऊपर कर उन्होंने सिखाया कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भगवान स्वयं जैसे एक जो शिक्षक होता है विद्यार्थी को सिखाने के लिए, अपने हाथ में वो कलम लेता है और लिखता है ए बी सी डी, और विद्यार्थी को कहता है ये देखो ए, ये देखो बी, ये देखो सी, ऐसे लिखा जाता। तो कोई व्यक्ति जो जानता नहीं वो क्या कहेगा, अरे क्या एबीसीडी सीख रहा है इतना बड़ा होके ये व्यक्ति? तो वो एबीसीडी नहीं सीख रहा, वो लिख रहा है विद्यार्थी को सिखाने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान स्वयं जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हमें कैसे जप करना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए, वो जब सिखा रहे हैं तो हमारे लिए कि हम अपने जीवन में अपनाएं,
तो भगवान अपने नाम के रूप में इस कलयुग में आए हैं, और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि वो नाम के रूप में आए। जैसे पिछले युगों में भगवान ने अपना अवतार लिया, और भगवान अवतार लिए, लीला की और भगवान चले गए। सत्युग में भगवान आए, अपने लीला की और चले गए। त्रेता युग में रामचंद्र जी के रूप में लीला की, आए चले गए। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिए, लीला की, चले गए। परंतु कलयुग में जब भगवान ने हमारी स्थिति देखी कि हमारी स्थिति इतनी ज्यादा दुर्गति के पथ पर है, तो भगवान आए परंतु भगवान गए नहीं, और कलयुग के अंत तक हमारे साथ रहेंगे इस नाम के रूप में। तो ये जो भगवान का हरि नाम है, जो इतना ज्यादा जोर दिया जाता है इस कलयुग में, कहा गया है कि इस कलयुग के जितने भी कलमश हैं उसे नाश करने के लिए भगवान ने केवल अपना ये हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। और कोई गति नहीं है इस कलयुग में, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। तीन बार ठोक पीट कर भगवान ने कह दिया कि ताकि कोई संशय न रह जाए, और केवल एक ही दिया महामंत्र युग धर्म। ऐसा नहीं कि एक पूरी दुकान खोल दी महामंत्रों की और कह दिया इसमें से जो खरीदना है, जो चुनाव करना है कर लो। भगवान ने कहा एक ही ये महामंत्र है, यही युग धर्म है, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं इस भौतिक ये कलयुग में हमारे उद्धार का। तो आज का ये जो जन्माष्टमी महोत्सव है, वो वास्तविक रूप में हम मना सकेंगे जब हम भगवान के उस अवतार को अपने जीवन में अपनाएंगे, और वो है भगवान का नाम अवतार। तो युग धर्म इस कलयुग का है ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप। और कलयुग हालांकि सारे दुर्गुणों से भरा हुआ है, और हमारे दुर्गुण इस कलयुग में ऐसे हैं कि जब भी भगवान के नाम के विषय में या भगवान के विषय में कुछ अपने जीवन में अपनाने की बात आती है, तो तुरंत हमारे जो बहानों का लिस्ट है वो तुरंत सामने आ जाता है कि आप ये प्रभु जी लेक्चर ठीक है दे दिया, ये आज का जन्माष्टमी महोत्सव हमने मना लिया वो ठीक है, परंतु ये आप नाम लेने के लिए रोज कह रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार हम पूछते हैं भाई क्या कारण है, किस कारण की वजह से मुश्किल हो जाएगा। टाइम, प्रभु जी टाइम किसके पास है, आप बताइए, आपको तो करने के लिए कुछ है नहीं, कोई काम धंधा करते नहीं आप। यहां पर हमारा काम धंधा है, परिवार है, बच्चे हैं, समाज है, सबको देखने में टाइम टाइम होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने किसे सुनाई भगवद गीता, अर्जुन को। तो अर्जुन कोई साधु महात्मा जंगल के नहीं थे, अर्जुन एक गृहस्थी थे, उनका घर परिवार था, उनके बच्चे थे, पत्नियां थी, और उनका ड्यूटी क्या था, वो एक योद्धा थे। और कैसे योद्धा, जिसके ऊपर ऐसा उत्तरदायित्व था पूरे पृथ्वी का कि अर्जुन यदि युद्ध जीतता है तो पृथ्वी का नरेश बनेगा, युधिष्ठिर को बनाएगा, और अर्जुन यदि युद्ध हारता है तो दुर्योधन। तो पूरी पृथ्वी का कार्यभार उत्तरदायित्व अर्जुन के कंधों पर था। तो क्या हम में से कोई है जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी का उत्तरदायित्व है कि हमारे पास समय नहीं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, अब शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने ही जाने वाला था, उसके पहले अर्जुन ने अपना गांडीव रखा और कहा कि गीता सुनाओ। तो अर्जुन इतना समय निकाल सके, तो क्या हम अर्जुन के जितना व्यस्त हैं, क्या हमारे सामने इतनी बड़ी कौरव सेना खड़ी है कि हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है ये गीता या हरिनाम लेने का। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम गीता नहीं समझ सकते, 700 श्लोक और 18 अध्याय गीता के नहीं समझ सकते, इसीलिए तो मैंने ये हरिनाम दे दिया कि ये हरिनाम ले लो। परंतु हमारे पास ऐसा नहीं कि समय नहीं है, समय बहुत रहता है। यदि पूछा जाए कि पिछले हफ्ते कितनी पिक्चरें देखी और कितना टीवी देखा हमने, तो उसका कई घंटों हो जाएगा। एक पिक्चर कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। 3 घंटे की पिक्चर, उसमें पैसा हमें डालना पड़ता है उसे देखने के लिए, और देखने के पश्चात क्या होता है? मन प्रदूषित होता है। तो सब कुछ है हमारे पास, टाइम भी है, यदि पिक्चर देखने का टाइम है, यदि टीवी देखने का टाइम है, यदि और अनसंट प्रजल्प या गपशप करने का टाइम है। तो जैसे एक बार एक शव यात्रा जा रही थी, तो शव यात्रा में आपने देखी होगी, शव यात्रा में 4 लोग उस शव को उठाकर जाते हैं और क्या कहते रहते हैं? राम नाम सत्य है। राम का नाम लेते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है। तो शव यात्रा जा रही थी, तो एक पिता और पुत्र वो शव यात्रा को देख रहे थे। तो पुत्र पिता से पूछता है कि पिताजी ये क्या हो रहा है? तो पिताजी कहते हैं ये एक शव यात्रा जा रही है। तो पुत्र पूछता है कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? तो पिताजी कहे कि ये राम का नाम ले रहे हैं। तो पुत्र पूछता है वो ऊपर लेटा हुआ नहीं ले रहा? तो पिताजी ने कहा वो मरा हुआ है, मरा हुआ व्यक्ति है, वो कैसे लेगा नाम? तो अब देखिए ये छोटा सा पुत्र है इसका, तो अपने मासूम लॉजिक लगाता है ये, और पिताजी को फिर पूछता है कि आप कह रहे हैं कि वो मरा हुआ है इसलिए नाम नहीं ले रहा, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो नाम नहीं ले रहा वो मरा हुआ है? और पिताजी नहीं ले रहे थे। तो पिताजी ने पुत्र की तरफ देखा और पिताजी सोचने लगे कि ये जो कह रहा है वो तो सही बात है कि वो व्यक्ति मरा हुआ है इसलिए नाम नहीं ले रहा, और ये मुझे कह रहा है कि जो नाम नहीं ले रहा है वो इस तर्क से मरा हुआ माना जाना चाहिए। तो पिताजी पुत्र के साथ गए और वो शव यात्रा में ज्वाइन कर दिए, राम नाम सत्य है। और उसके पश्चात वो नियमित रूप से राम का नाम लेने लगे, ये सोचते हुए कि ऐसा समय हमारा नहीं आना चाहिए कि जब हमें तिरड़ी पर लेटाया गया है और कोई और राम का नाम ले रहा है, और पूरा जीवन हम केवल काम का नाम ले रहे थे, काम बहुत है। तो ये काम यदि हमारे हृदय से, हमारे जीवन से कम करना है तो राम का नाम लेना है। इसीलिए हम बचपन में एक भजन गाया करते थे, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में और भरी जवानी आनंद से सोया, इंद्रिय भोग किया, और फिर अब बुढ़ापा आ गया है, अब फिर पछता रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया। परंतु कहा गया है देर नहीं है अब भी, उस समय भी यदि हम भगवान का नाम ले ले जब तक ये श्वास चल रहा है। इसलिए कहा गया है निश्वासे नहीं विश्वासो कदारुद्धो भविष्यति, कीर्तनत मतो बाल्यात हरेर नाम एव केवलम। निश्वासो नहीं विश्वासे, कि ये जो हमारी श्वास चल रही है, रोज इतनी श्वास लेते हैं, अभी भी हम श्वास ले रहे हैं, तो ये श्वास कब निश्वास में परिवर्तित हो जाएगी? निश्वास कहते हैं श्वास रुक जाने को, तो ये श्वास कब निश्वास में परिवर्तित हो जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं। निश्वास से नहीं विश्वास हो, इसीलिए कोई निश्चित नहीं कि कब हमारी शव यात्रा निकलेगी, कोई डेट टाइम पता नहीं है उसका। तो उस वो निकलने से पहले जब तक ये श्वास चल रही है, जब तक ये प्राण है, जब तक ये शक्ति जो कुछ भगवान से ही दी गई है, तो इस सब को हमें हमारे उद्धार के लिए और उससे ज्यादा भगवान की प्रसन्नता के लिए वो हमें नाम लेना शुरू कर देना चाहिए जल्द से जल्द। और वो कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के जन्म उत्सव के इस पर्व पर आज आप ये सर्वोत्तम भेंट भगवान को उनका बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं। कौन सा बर्थडे गिफ्ट? कि अपने जीवन में हम इस हरिनाम को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।
हरि हरि बोल। इस ग्रह शिक्षाष्टकम प्रभु की।
तो अभी बहुत सुंदर अभिषेक होगा भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का, तो इस अभिषेक में आप भाग लीजिए और बहुत ही सुंदर दर्शन होगा। और उसके पश्चात फिर कीर्तन जारी रहेगा और रात के 12 बजे भगवान के जो आविर्भाव की तिथि है, रात के 12 बजे महाआरती होगी कीर्तन के साथ और तत्पश्चात सबको भोजन प्रसाद भी दिया जाएगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।